एक का 35 में मिलेगा आपको। तो एक दिन
कौन से वर्ष
मार्क 135 कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने प्रभु से पूछा प्रभु जब सुबह सुबह उठ के जो प्रार्थना होती थी उसे किस तरह की बातें होती थी, मतलब व्हाट डू यू यूज टू प्रे। क्योंकि प्रभु तो प्रभु है, परमेश्वर मनुष्य के रूप में है और वो पिता से क्या प्रार्थना कर रहे होंगे। हमारे तरह जीवन नहीं था ना प्रभु का, बीवी बच्चे नहीं थे और इस तरह की चीजें नहीं थी, काम पे नहीं जाना होता था, बिजनेस में नहीं जाना होता था, फिर किस तरह की बातें प्रभु आप करते थे। तो दैट वाज माय क्वेश्चन। अब प्रभु ने क्या बताया मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि प्रभु ने कुछ नहीं बताया लेकिन ये क्वेश्चन मैं रोज पूछता था। फिर इसके बाद अक्टूबर से भी पहले, शायद सितंबर या अगस्त में मैंने शुरू किया था, बट दूसरी या तीसरी बार जब मैं प्रभु से पूछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी प्रार्थना की शैली जो है वो बदल गई, प्रार्थना करने की जो स्टाइल है, और मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा। यानी जिस तरह हम लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं वैसे नहीं कर रहा था मैं बहुत कैशुअली, बहुत ही आसादी के साथ, बहुत ही फ्रीली प्रभु से बातें करने लगा। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे और भी बातें मुझे समझ आएगी। यानी प्रभु ने मुझे सीधी तरह जवाब अभी तक नहीं दिया, हो सकता है कि मुझे समय लगेगा समझने में, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रभु मुझे समझा रहा है। तो इफिसियों की पत्री में तीसरा अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3, हम समझते हैं और मैं वहां से कुछ आपको बताना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरा उस सवाल का जो जवाब है उसकी शुरुआत है। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इतना तो आपको मालूम है कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके समझाता है, बहुत सारी बातें परमेश्वर एकदम नहीं बताता। आपके जीवन में कल से लेके आपके अंत तक क्या कुछ होगा वो सब कुछ एक साथ परमेश्वर दिखाते तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर थोड़ा सा अच्छी बातें दिखाता है, जो अच्छा नहीं है वो परमेश्वर दिखाता नहीं, अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर बताएगा कि जैसा नहीं होने वाला है होने वाला है, लेकिन बीच में कुछ और भी है वो नहीं बताता, क्योंकि आप घबराए जाएंगे और आप सब कुछ छोड़ के भागेंगे, पता नहीं कहाँ भागेंगे, लेकिन ऐसा होता है। तीसरा अध्याय का 12वां पद में से हम पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट जाने का अधिकार है। अब आप ये मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आया। एक मिनट हम प्रार्थना करें, let's ask the Holy Spirit to help us। पवित्र आत्मा हम इन सब बातों को समझने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम सुन भी रहे हैं तुझसे मदद मांगते हैं, हम पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। We need Holy Spirit। इसमें लिखा है जिसमें हमको, यानी हम में से हर एक को, तो हम कह सकते हैं जिसमें मुझको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट जाने का अधिकार है। मैं चाहूंगा कि आप एक मिनट यानी 60 seconds जरा सोचिए इस बारे में, आपके पास, आप में से हर एक के पास परमेश्वर के पास जाने के लिए, निकट, निकट आप समझते हैं ना एकदम पास जाने का अधिकार है, और वो अधिकार जो है परमेश्वर के पास साहस और भरोसे के साथ जाने की हमें चेहरे के पास है। कैसा लग रहा इस बात में या इस विषय के बारे में सोचते हुए आपको क्या लग रहा है कि यू एंड आई हैव दैट फ्रीडम, हम सबके पास ये आजादी है कि हम जब चाहे परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के पास जा सकते हैं और हम हियाप से जा सकते हैं, हमें डरते हुए या झिझकते हुए संदेह करते हुए जाने की जरूरत नहीं, हम हियाप से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हिंदी अनुवाद में लिखा है कि हमारे पास ये अधिकार है, अंग्रेजी के अलग अलग अनुवादों में अलग अलग शब्द हैं, NIV में आप देख रहे हैं तो उसमें लिखा होगा यू हैव दैट फ्रीडम। इस 12वां पद की शुरुआत में लेकिन एक शब्द है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो आपके और मेरे पास ये अधिकार है या ये फ्रीडम है कि हम प्रभु के पास, परमेश्वर के पास साहस और भरोसे के साथ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं बताइए, क्यों जा सकेंगे हम?
क्योंकि वो अधिकार हमें उसी ने दिया है।
ओके, क्योंकि वो अधिकार हमें उसी ने दिया है। ओके, दैट्स अ गुड आंसर। और क्या है इस वर्ष में, कहीं आपको कुछ और दिख रहा है? इन्विटेशन टू, ओके, इन्विटेशन टू रिलेशनशिप। और क्या दिखता है आपको?
इन होम।
आपको वो शब्द दिख रहा है ना जिसमें, जहां में हिंदी में लिखा है कि जिसमें और अंग्रेजी में इन होम,
तो मसीह में होने के कारण, मसीह में विश्वास करने के कारण, आपके चाल चलन सही होने के कारण नहीं, आप हमेशा हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, शाम को से लेकर फिर सोने के समय तक सब कुछ ठीक कर रहे हैं और कोई भी गलती या पाप नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं। तो सोचिए इस बारे में, केवल इसलिए कि आप मसीह में हो, उस पर विश्वास करने के कारण। आपको मालूम है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिसमें दो या तीन अक्षर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार भी और आत्मिक विधि से भी। ये सारी बातों की नींव जो है इसमें है कि जिसमें, वैसे भी आपको शायद मालूम है, मैं एक दो बार बता चुका हूँ कि इफिसियों की पत्री में, जो कि सबको मालूम है कि मेरे फेवरेट बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो इस इफिसियों की पत्री में आप पहला अध्याय में कम से कम, मैंने एक बार गिना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कम से कम 15 बार आपको ये दिखने को या पढ़ने को मिलेगा, इन हिम या इन क्राइस्ट। क्योंकि जो कुछ हम आत्मिक दृष्टि से प्रभु की नजर में है वो मसीह में होने के कारण है। ये फर्क बात है कि हम में से अधिकतर लोगों अभी भी उसकी ठीक तरह से समझ नहीं है, अभी भी हम परायों के समान सोचते हैं, जबकि हम घराने के हैं, तो हमें थोड़ा सा घर के अंदर आने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, यानी परमेश्वर की संतान होने के बावजूद हम नौकरों के समान सोचते हैं, हम सारे के सारे नहीं, ज्यादातर। पीछे मैंने एक दिन आपको बताया था ना कि जब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलने के बारे में बात करते हैं, हम इफिसियों के पत्र में कहते हैं पहले अध्याय में, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रसन्न हुए कि हमें इतनी बड़ी बड़ी और आदर की योग्य पदवी उसके कारण दी गई, यानी मसीहा के कारण। He was so pleased to give us that honorable position of being the children of God. तो हमारी प्रार्थना फिर उसके अनुसार होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें बताता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह में होने के कारण। अब सवाल यह था ना कि क्या हम सब मसीह में हैं? इसके बारे में किसी और दिन अध्ययन करेंगे। प्रभु ने तो हमें मसीह में रखा है, हम अपने सोच और विचार में मसीह में है या नहीं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मसीहा के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के विषय में क्या सोचते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कभी सोचा है आपने इस बारे में? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए निजी वचन में लिखा ना कि सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर, जीवन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल वही है। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपका जीवन आपके विचारों के अनुसार होगा। तो प्रभु यीशु मसीह सुबह सबसे पहले थोड़ा सा समय निकाल के परमेश्वर से बात करते हैं। और पेड़ों के काम में हमने क्या देखा, पेड़ों के काम की शुरुआत कैसे है, ओपनिंग वर्ड्स क्या है, जो कुछ यीशु करता था और फिर अपने सिखाता था। okay? तो यीशु मसीह पहले करते थे और करने के द्वारा वो लोगों को सिखाते थे। यीशु ने लोगों को नहीं कहा कि सुबह उठ के प्रार्थना किया करो, नहीं कहा, कहा है क्या? पक्का बाइबल स्कॉलर्स इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं, स्कॉलर सारे इधर है। इसने कभी बोला किसी को कि प्रार्थना किया करो? बोला है, लेकिन सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए ये बोला कि जब तुम प्रार्थना करते हो, ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो तब, जब तुम प्रार्थना करते हो। तो प्रभु ने करके दिखाया, लेकिन उसके बारे में समझ बाद में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि मसीह में होने के कारण, जैसे मसीहा, जैसे यीशु करता था वैसे हम कर सकते हैं। क्या प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो कुछ मुझ पर विश्वास करेगा वो सब काम करेगा, जो मैं करता हूं उससे बढ़कर करेगा, तो हमारा ध्यान कहां पर जाता है?
चमत्कारों की तरफ।
हमारा ध्यान चमत्कारों की तरफ, चंगाइयों की तरफ, वो सही है, लेकिन प्रभु ने कहा कि जो कुछ मैं करता तो उसमें ये भी है कि वो पिता के पास जाता था सुबह, पुराने कितनी लंबी चर्चा होती थी और क्या क्या बातें होती थी, पत्रस को चुनू या यहूदा को चुनू, किसको चुनू, इस तरह की बात। लेकिन मैंने उसमें ये देखा उसमें ये कमी है, तो मैंने कोई बात नहीं, इसको भी रख लो, इस तरह की बातें कोई होगी ना। तो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि उस दिन से जब से मैंने प्रभु से पूछा है, क्वेश्चन पूछा और मैं एक दो दिन और पूछा, इसके बाद अब मैं आज फिर ध्यान आया मुझे यहाँ बैठे बैठे, तो प्रभु से फिर मैंने देखा कि मैं किसी एक बात को लेकर अभी प्रेयर कर रहा था, तो प्रभु से डिफरेंट तरीके से मैंने बात की। ऐसा मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए, अदरवाइज मैं सिखाने वाला नहीं था, अलग बताने वाला नहीं था, मैं सिखाने का सिर्फ बता रहा हूँ। तो हमारे पास इतनी आजादी है, मैं प्रभु से, और इस सेक्शन को यदि आप
घर में जाके आराम से पढ़ेंगे तो ये 12 पद था, 13 पद और 14, 15, 16 ये आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, जिसमें एक प्रार्थना है हमारे लिए, जो प्रार्थना मैं समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए, प्रदूषण मांगनी चाहिए इस चीज से कि हम उसके प्यार को, आज हम जब आराधना कर रहे थे तो हम प्रभु के प्यार के विषय में ही ज्यादातर गाना गा रहे थे, हम प्यार के विषय में बता रहे थे ना कि प्रभु तेरा प्यार कितना बड़ा है, आसमानों से भी ऊंचा है, साहर से भी गहरा है, उस प्यार को हमें समझ आना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो प्यार समझ आए। एक और भी बात बताता हूँ, इन दिनों में मैं प्रभु से ये भी पूछ रहा था कि इब्रानियों की पत्री में 14 अध्याय में एक विश्राम के विषय में चर्चा है, बल्कि पूरा अध्याय है उस विश्राम के बारे में है जो परमेश्वर से हमें मिलता है, वो शुरू होता है 3 अध्याय में, आप चाहे तो वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं प्रभु से पूछता रहा क्योंकि इस विश्राम दिन को लेके, इस विश्राम को लेके कई परमेश्वर के दासों से मैंने टीचिंग सुनी है। अभी कुछ समय पहले जब पास्टर लोहित आए थे हमारे बीच में, उन्होंने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने उस बारे में सिखाया नहीं, पर इतना बताया था आपको याद होगा कि प्रभु के उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करने के लिए या मेहनत करने के लिए लिखा है। आप लोग सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आप पहली बार सुन रहे बात है, बाइबल में ये सारी बातें है ना, हम मुस्कुरा सकते हैं। मैं आपसे सवाल नहीं पूछने वाला आज, कोई भी मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, सवाल हमेशा आसान होता है आपको मालूम है, उसका जवाब थोड़ा सा डिपेंड करता है।
सो इस 14 अध्याय में विश्राम के विषय में मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु ये क्या है, ये कैसा विश्राम है इसका, और प्रभु ने इसका भी जवाब नहीं दिया, जैसे अक्सर हमारे साथ होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप पूछते हैं और जैसे आप सोचते हैं वैसे कोई जवाब नहीं आया, उसको सोचते हैं कि जब परमेश्वर से कुछ पूछेंगे तो एकदम टिंग टिंग फिर क्लिकिंग होगी, फिर एक फरिश्ता के खड़ा होगा कि तुमने जो सवाल पूछा था 3 दिन पहले, मैं 3 दिन पहले वहां से निकला था, आज पहुंचा, ऐसा नहीं होता ना, या हो भी सकता है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि एकदम जैसे वो कौन सी मूवी थी 10 कमांडमेंट्स, उसमें जो भारी आवाज में आप परमेश्वर बात कर रहे ना, ऐसे कुछ होगा। तो मैं इस अध्याय को पढ़ता रहा, इसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि हैदराबाद में अक्सर दिखाता है कुछ ना कुछ, आज कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैं प्रार्थना करता रहा कुछ बातों को लेके, आपको मालूम है कि प्रार्थना के विषय में मैंने बताया कि मेरे प्रार्थना करने की जो स्टाइल है वो बदल गई, तो मैं प्रभु से खुल के प्रार्थना बातें कर रहा हूँ आप सब लोगों के बारे में और भी बातों को लेके। तो एक बात अब मुझे याद नहीं आ रही होगी कौन सी बात थी, वो मेरी पर्सनल बात थी या चर्च की थी, अब ध्यान रखना, मैंने प्रभु से सवाल पूछा था कि ये प्रभु ये विश्राम क्या है, ये विश्राम दिन है इसमें और हमारे लिए विश्राम रखा है और हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए और ये परमेश्वर के लोगों के लिए, पूरा अध्याय पढ़ लेना, ये सारी बातें उसमें है, उसमें ये भी लिखा है कि अविश्वास के कारण लोग उस विश्राम में नहीं पहुंच सके, अविश्वास के साथ ये भी लिखा है कि लोगों ने बलवा किया, फिर उसमें ये भी लिखा है कि अविश्वास से क्या हुआ कि उनका मन कठोर हुआ, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन वो एक कुछ मिसिंग है उसमें जो मुझे समझ नहीं है। तो मैं प्रभु से पूछा नहीं मिला, फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू की, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक विषय को लेकर मैंने प्रभु से बात की कि ऐसा 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 है और प्रभु, अब मुझे याद नहीं मेरे प्रभु क्या क्या सजेशंस दिया, जैसे हम प्रार्थना में करते हैं, करते नहीं आप ईमानदार लोग तो बता रहे सर ला रहे, हाँ जी हम प्रभु को बहुत सारे सजेशंस देते हैं और ये नहीं पूछते कि प्रभु बाय द वे तेरी इच्छा क्या है, चलो ठीक है आजादी है ना, ठीक है मांगते रहो है ना, बोलते रहो बातें, सारी बातें बोलो, उसके बाद प्रभु बात करेगा ना, प्रभु बोलेगा कि अब चुपचाप रह के जान लो परमेश्वर, वो तब बोलेगा जब हम बहुत सारी बातें करेंगे, अगर हम चुप है तो प्रभु कैसे बोल सकता है हमसे, जैसे आराधना में सब चुप बैठे हैं तो प्रभु आपसे क्या बोलेंगे, चुप रहो तब तो प्रभु को बोलना पड़ेगा कि कुछ तो बोलो ठीक है, लेकिन आराधना में सब चिल्ला रहे हैं, सब बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो प्रभु बोलेंगे ना अब चुप रहो मेरी बात सुना है ना। तो मैं बातें करता रहा, कुछ ऐसा मामला था कि जैसे संगीन मामला था, तो जब मैं सारी बातें प्रभु के सामने रखने के बाद एक ऐसी शांति आई मेरे मन में कि उस बात को लेके मेरे मन में कोई भी टेंशन नहीं था, कुछ भी फिक्र नहीं और कोई चिंता नहीं, और मैं बिल्कुल अंदर एक आराम महसूस किया, एक विश्राम महसूस किया, और तब मुझे समझ आया कि जिस विश्राम के बारे में प्रभु बता रहा है वो ये, अगर हम अपनी बातें प्रभु के पास ले जाएंगे और प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे तब हम विश्राम में प्रवेश करें। अक्सर हम क्या करते हैं, हम प्रभु के पास ले जाते हैं बहुत सारी बातें करते हैं प्रभु, हमें मालूम है कि तू ऐसा कर सकता है, हमें मालूम है कि तेरे वचन में लिखा है कि बड़ा ब्ला 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 ब्ला, हम बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके लॉर्ड अब मैं वापस ले जा रहा हूँ, कल फिर ले आऊंगा। जो बोझ जो दुख हमने प्रभु के सामने ले गया, अच्छा प्रभु अब तूने सारा सुन लिया, मैं कल फिर आऊंगा, यही लेके आऊंगा, थोड़ा सा उसे भी ज्यादा हो। तो जैसे मैंने वो उस शांति को महसूस किया, वो उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वो एक अनोखा फीलिंग मैंने देखा कि उस बात को लेकर। उसके बाद मैंने दोबारा कभी प्रार्थना नहीं की, वो पूरी तरह प्रभु के हाथ में चला गया। मुझे एक बोलते ना कि एक आश्वासन मिला, एक अश्योरेंस मिला, प्रभु ने बोला कुछ नहीं मुझसे, पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने आत्मा में एक अश्योरेंस महसूस किया, एक तसल्ली आई, और तब मुझे समझ आया जो कुछ समय पहले मैं प्रभु से पूछ रहा था ना कि ये विश्राम क्या है। और पवित्र शास्त्र हमें ये आश्वासन देता है या हमसे वादा करता है, यानी परमेश्वर हमसे वादा करता है कि हर विश्वासी के लिए एक विश्राम है। कब, कितनी बार,
हर बार
डेली एक विश्राम है, उस विश्राम में हमें प्रवेश करना चाहिए। अब इस बात को जानने के बाद मुझे बहुत सारी बातें समझ आई। इसराइल के साथ क्यों हुआ, क्योंकि उनके अविश्वास के कारण उन्होंने अपने मन को कठोर किया। तो अगर हम प्रभु के हाथ में छोड़ेंगे और उतना समय प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु से बातें करते हुए, इस बात को समझते हुए कि उतना समय से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको एक घंटा बैठना चाहिए, कि सिर्फ ठीक उतना समय जितना समय में आपको आपके मन की सारी बातें प्रभु को बतानी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास आजादी है। हम प्रार्थना के विषय में क्या सोचते हैं, प्रार्थना से पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, फिर उसको प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए, बंद करना चाहिए यीशु मसीह के नाम से, ये सब ठीक है, लेकिन इसी बीच की बात हम पर प्रभु ध्यान देता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, किस भरोसे के साथ बोल रहे हैं, क्या हमारे पास, हम जब प्रार्थना में जाते हैं या जब हम प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना से ऐसा लगता है ना कि बहुत कुछ फॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटी है, जब हम प्रभु से बातें करते हैं तो हमें मालूम है कि हम प्रभु को सारी बातें बता सकते हैं। जब कुछ छुपाना होता है प्रभु बुरा तो नहीं मानेगा या दान तो नहीं पड़ेगी या कुछ भी, हमसे जैसे हम इंसान के साथ बात करते हैं वैसे नहीं, प्रभु के साथ हम कुल के सारी बातें बता सकते हैं और उस विश्राम को पा सकते। उस विश्राम पाने से क्या फायदा है, उस विश्राम को पाने का मतलब ये कि प्रभु ने उस बात को ले लिया आपके हाथ से, यानी उसको ऐसा कहना चाहिए कि हमने पूरी तरह से उस बात को प्रभु के हाथ में दे दिया, तब प्रभु ने ले लिया और हमें मालूम है कि अब उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो उसका जवाब एक दिन में आए, एक महीना बाद आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफिसियों की पत्री में जो हमने देखा, उसमें या यीशु मसीह में, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम हियात से या साहस के साथ भरोसा रखते हुए परमेश्वर के पास जा सकते हैं और अपनी सारी बातें बता सकते हैं, और हम उसके हाथों में उन बातों को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो हमें विश्राम मिलेगा, और परमेश्वर की इच्छा है कि हमें ऐसा विश्राम मिले। इसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास करने की बात नहीं आती, जैसे कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा विश्वास करना, अगर ये बात समझ आई ना कि हमारे पास आजादी है, हम अपने परमेश्वर के पास जा सकते और उसको बता सकते, दी एंड कहानी, तो फिर हम और आराम ना करें।